नमस्कार, कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय श्रोताओ, इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से दूसरी पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका नाम है निर्गमन। हम आशा करते हैं कि इस पुस्तक से आपको आत्मिक लाभ मिलेगा। तो आइए, अपने वक्ता के साथ आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले आइए सुने ये मधुर गीत।
प्रिय मित्र, आप सबों को मेरा मसीही नमस्कार मिले। मैं प्रभु की दया से कुशल पूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग भी प्रभु की दया से कुशल पूर्वक होंगे। मित्रों, पिछले अध्ययन में हमने आठवीं विपत्ति टिड्डियां और नवीं विपत्ति अंधकार और इसराइल पर परमेश्वर का दावा, परमेश्वर द्वारा मिस्र के पहलौठों को मारने की धमकी के विषय में देखा था। आज के अध्ययन में हम इसराइलियों के धार्मिक वर्ष के आरंभ करने के साथ व्यवहारिक वर्ष को भी आरंभ होते हुए देखते हैं। फसह के पर्व की स्थापना हुई और फसह के पर्व को मानने की रीति विधि के वर्णन किए गए। पहलौठों के मारे जाने और इसराइल के संतानों को मिस्र देश से निकल जाने दिया गया आदि विषयों के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले हम पाते हैं कि फसह के पर्व की स्थापना मिस्र देश से छुटकारा पाने की यादगारी में किया गया और उन्हें यहोवा के राष्ट्र के रूप में स्वीकार किए जाने के लिए किया गया। फसह एक पर्व है जो इसराइल राष्ट्र के जन्म की नींव को परमेश्वर के साथ एक नए रिश्ते के साथ स्थापित करता है। इसराइल के धार्मिक वर्ष का आरंभ होना। मित्रों, निर्गमन की पुस्तक में अध्याय 12 को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। यहाँ पर हम फसह के पर्व की स्थापना को देखते हैं। यह उस चित्र को दर्शाता है जिसके बारे में पौलुस पहला कुरिन्थियों की पत्री 5 अध्याय और उसके 7 पद में कहता है, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ। मित्रों, इस अध्याय में हम मसीह को पाते हैं। हम आगे निर्गमन की पुस्तक 12 अध्याय और उसके 1 और 2 पद में पढ़ते हैं। फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा कि यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। मित्रों, यह अध्याय हमें निर्गमन की पुस्तक में एक नए चरण की ओर ले जाता है। पहला भाग अध्याय 1-11 है, जो छुटकारा देने वाले मूसा के विषय में वर्णन करता है, और दूसरा भाग अध्याय 12-14 है, इसराइलियों के छुटकारे का वर्णन करता है। मित्रों, पहले छुटकारा देने वाला है और अब यह छुटकारा है। वास्तव में छुटकारा मूसा के द्वारा नहीं मिला है, सबसे पहले छुटकारा लोहो के द्वारा है। अतः यह फसह का पर्व जिसमें पहले अठे की मृत्यु हुई है। तब हम अध्याय 13-14 में लाल सागर को पार करने और मिस्र की सेनाओं के विनाश को सामर्थ के साथ या सामर्थ के द्वारा होते हुए देखते हैं। परमेश्वर ने उन्हें लोहू और सामर्थ के द्वारा छुटकारा दिया। मित्रों, आज हमारा उद्धार भी लोहू और सामर्थ के द्वारा ही होता है। लोहू जो प्रभु यीशु ने क्रूस पर हमारे पापों के लिए बहा दिया और हमारे पापों के लिए कीमत चुका दी। पवित्र आत्मा का सामर्थ इसे वास्तविक बनाता है और हमारे पापमय हृदय को प्रभावित करता है। जकर्या के पुस्तक 4:6 में लिखा है, न तो बल से और न शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा, मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। मित्रों, छुटकारा देने का काम प्रभु यीशु का है, जो उसने क्रूस पर हमारे लिए किया, और पवित्र आत्मा का काम हमारे अंदर में होता है। इस अध्याय के 1-2 में एक राष्ट्र के जन्मदिवस का वर्णन है। जब इसराइल मिस्र में प्रवेश किया तो वह एक परिवार के जैसे था, और जब वे मिस्र से प्रस्थान किए तो वे एक राष्ट्र अर्थात एक देश बन गए थे। यहाँ पर एक रोचक बात यह है कि परमेश्वर परिवार पर जोर देते हैं, क्योंकि यही परिवार है जो रचना खंड को समाविष्ट करता है और जिससे एक राष्ट्र का निर्माण होता है। यह एक देश का आधार स्तंभ तैयार करता है। और आपको याद है कि कैसे फिरो ने इसराइलियों को बिना भूसा के ही ईंट बनाने पर उन्हें बाध्य किया था। हर समय इसराइल गुलामी में था और परमेश्वर ने एक राष्ट्र को स्थापित करने के लिए उन्हें परिवार का ईंट और प्रत्येक को भूसी का तिनका बनाया, जिससे राष्ट्र स्थापित हुआ। एक पुरानी कहावत है कि कोई भी देश उस देश के परिवारों से शक्तिशाली नहीं है। इसराइलियों के लिए आरंभ करने का दिन आ गया था। हम इस अध्याय में इसराइल के संतानों का मिस्र देश से प्रस्थान करने की गिनती आरंभ करते हैं। अब हम आगे देखते हैं फसह के पर्व की स्थापना। निर्गमन की पुस्तक 12:3 में हम पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, इसराइल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो कि इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार घराने के पीछे एक एक मेमना ले रखो। मित्रों, इस पद में दो मुख्य बातों पर जोर दिया गया है। पहला है लोहू और दूसरा है परिवार। इसराइली एक देश बन गए हैं और परमेश्वर उन्हें छुड़ाने जा रहे हैं, परंतु वे इसे परिवार के द्वारा करेंगे और परिवार में भी परिवार के प्रत्येक सदस्य के द्वारा करेंगे। प्रत्येक घर में एक मेमना अर्थात भेड़ होगा, और मेमना वास्तव में लोहू की बात करता है, जिसे दरवाजों के आलंगों पर लगाया जाएगा। हम निर्गमन 12:4 में पढ़ते हैं, लिखा है, और यदि किसी के घराने में एक मेमने के खाने के लिए मनुष्य कम हो तो वह अपने सबसे निकट रहने वाले पड़ोसी के साथ प्राणियों की गिनती के अनुसार एक मेमना ले रखे, और तुम हर एक के खाने के अनुसार मेमने का हिसाब करना। मित्रों, यह पद हमें परिवार के लिए मेमना के छोटे होने के बारे में कुछ भी नहीं बताती है, परंतु ऐसा नहीं हुआ होगा और मेमना संतुष्टजनक या काफी रहा होगा। जो भी हो, यह संभव है कि उस मेमने के लिए परिवार बहुत छोटा हो। परमेश्वर परिवार के प्रत्येक सदस्य के साथ रुचि रखते हैं और प्रत्येक परिवार के पास एक मेमना होना था, परंतु उसका क्या था जो पुरुष और स्त्री संतान रहित थे या विवाहित बच्चे जो उससे दूर रहते थे। ऐसी स्थिति में उस परिवार को अपने पड़ोसी के साथ शामिल हो जाना चाहिए था जो ऐसे ही स्थिति में है, और उस मेमने को बांट लें। परिवार के प्रत्येक सदस्य को मेमना का हिस्सा अर्थात टुकड़ा मिलना चाहिए। फसह के पर्व को मनाना व्यक्तिगत और निजी बात होना चाहिए। यह सच है कि यह राष्ट्र के छुटकारे के लिए है, परंतु यह परिवार में केंद्रित होता है, इसलिए इसे परिवार में प्रत्येक सदस्यों के द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए। फसह एक पारिवारिक कार्य है। मित्रों, परमेश्वर कार्य प्रणाली को प्रस्तुत कर रहे हैं जिसके द्वारा वह प्रत्येक को बचाने जा रहे हैं। कोई भी व्यक्ति इसलिए नहीं बचाया गया कि वह उस राष्ट्र का या उस परिवार का सदस्य था, उदाहरण के लिए हम उस फिलिपी के जेलर और उसके परिवार के उद्धार के बारे में देख सकते हैं जिसे प्रेरितों के काम की पुस्तक और उसके 17 अध्याय में हम पाते हैं। जेलर ने विश्वास किया इसलिए उसका पूरा परिवार उद्धार नहीं पाया, परंतु इसलिए कि परिवार के प्रत्येक सदस्यों ने मेमने के साथ कार्य संपादन बनाया। प्रत्येक को मेमने के साथ साझीदारी या भागी होना था, और वही बात यहाँ पर भी बिल्कुल सही है। प्रत्येक सदस्य को इसी रीति से अपने विश्वास को प्रदर्शित करना है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसके 31 पद में हम पाते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि यदि आप विश्वास करें तो आपका पूरा परिवार उद्धार पाएगा। जी नहीं, आपके परिवार को प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना होगा, तभी वे उद्धार पाएंगे। प्रत्येक को उसमें भाग लेना और शामिल होना होगा ताकि उसकी सुरक्षा की अधीनता में और लहू के छुटकारे में जो बाहर दरवाजे के आलंगनों में लगाया गया है आ सके। मित्रों, अब हम मिस्र देश में एक विनाशपूर्ण रात्रि में आ पहुंचे हैं। मिस्र के लोगों पर अंतिम विपत्ति का आना बाकी ही है। इसराइली लोग गोशेन में पिछले 3 विपत्तियों के समय में बचाकर रखे गए और परमेश्वर के लोग न्याय से छुड़ाए गए, परंतु वे वहां से छुटकारा नहीं पाए। अब उन्हें छुटकारा पाना है और लहू में अपने विश्वास को प्रदर्शित करना है। हम निर्गमन की पुस्तक के 12 अध्याय और उसके 5 और 6 पद में आगे पढ़ते हैं। लिखा है, तुम्हारा मेमना निर्दोष और पहले वर्ष का नर हो और उसे चाहे भेड़ों में से लेना चाहे बकरियों में से, और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना, और उस दिन गोधूली के समय इसराइल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। मित्रों, पवित्र शास्त्र का यह भाग निश्चय ही रुचिदायक है। यहाँ पर ध्यान दें कि प्रत्येक परिवार के पास एक मेमना था। उस दिन गोधूली के समय में संभवतः हजारों मेमनों की बलि की गई होगी, परंतु पद 6 में हम पढ़ते हैं, उस दिन गोधूली के समय इसराइल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। ये सभी मेमने एक दूसरे मेमना के विषय में बात कर रहे हैं। परमेश्वर ने इन सभी मेमनों को उस एक मेमने की तरह देखा जो प्रभु यीशु मसीह है, जो हमारे लिए फसा का बलिदान ठहरा। यह पर्व प्रभु यीशु मसीह के इस संसार में आने की ओर संकेत करता है। हम निर्गमन 12 अध्याय उसके 7 पद में पढ़ते हैं। लिखा है, तब वे उसके लोहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे उनके द्वार के दोनों आलंगों और चौखट के सिरे पर लगाएं। इसराइल के संतानों को मेमने के लहू को घर के बाहर दरवाजे पर लगाना था, और उस लहू को देखकर मृत्यु दूत उस घर को छोड़ देगा। मित्रों, मैं विश्वास करता हूं कि यहां जो तस्वीर दिया गया है वह उस प्रश्न का उत्तर देगा जो कई बार लोगों के द्वारा पूछा जाता है कि हवा में उठा लिए जाने के समय मसीही विश्वासियों के छोटे बच्चों का क्या होगा। जब परमेश्वर अपने लोगों को लेने के लिए आते हैं और छोटे बच्चे भी उसी घर में हैं, तो क्या वह माता पिता को ले जाएंगे और बच्चों को छोड़ देंगे? यह अध्याय हमें बताता है कि वह उन छोटे बच्चों को नहीं छोड़ेंगे। घर के अंदर में परिवार मेमना को खा रही है और विश्वास के द्वारा वे मसीह में सहभागी हो रहे हैं। छोटे बच्चों को मालूम नहीं है कि क्या हो रहा है, तो क्या वे मिस्र देश में छोड़ दिए जाएंगे? जब इसराइल मिस्र को छोड़कर जाएगा उस समय, यदि बच्चा जिम्मेदारी को समझने की आयु में नहीं पहुंचा है तो क्या वह मार डाला जाएगा? मेरे मित्रों, ऐसा नहीं है। मेमने का लहू जो दरवाजे पर लगा है वह पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। इसलिए हवा में उठा लिए जाने के समय में परमेश्वर बच्चों को पीछे नहीं छोड़ेंगे, जैसे कि उसने इसराइलियों को भी जब वे मिस्र से छुटकारा पाए तो किसी को नहीं छोड़े। हम निर्गमन 12 अध्याय उसके 8 पद में आगे पढ़ते हैं। लिखा है, और वे उसके मांस को उसी रात को आग में भूंजकर अखमीरी रोटी और कड़वे सागपात के साथ खाएं। मित्रों, प्रत्येक निर्देश जो इस पर्व से संबंधित है सबके एक विशेष अर्थ और संदेश हैं। यह पद परिवार की सहभागिता को दर्शाता है जिसमें परिवार फसह के पर्व को मनाने के लिए एक साथ जुड़ गए। अब मैं आपके सामने एक बात रखने जा रहा हूं जो कुछ लोगों के लिए कड़वी प्रतिक्रिया दिखाने का कारण होगा। आज हमारी कलीसिया में उच्च स्तरीय कार्यक्रम में हम छोटे लोगों को एक स्थान पर रखते हैं और इनसे उच्च स्तर के लोगों को दूसरे स्थान पर, और सबसे बड़े बुजुर्गों को उच्च स्तरीय समूह के एक अलग जगह पर रखते हैं। क्या आप मूसा को इसराइलियों से कहते हुए नहीं सुन सकते? जो उनसे कह रहे हैं, अपने बच्चों को फिरौन के राजमहल में देखभाल के लिए ले जाओ, क्योंकि वह स्वयं वहीं पर पला बढ़ा था। तब तो वह कह सकता था कि छोटे बच्चों को वॉलीबॉल के मैदान में ले आओ, और इसी प्रकार आगे की बातों को भी वह कह सकता था। मित्रों, क्या मैं आपसे कहूं, यदि ऐसा होता तो मिस्र से प्रस्थान करते समय या रात को निकलते समय बहुत से छोटे बच्चे गायब पाए जाते। फसह का पर्व मनाना एक पारिवारिक कार्य था, और मुझे डर लगता है कि आज हमारी कलीसियाएं परिवार को तोड़ने की दोषी है। कलीसियाओं में परिवार को एक साथ होना चाहिए। मित्रों, जब मैं किशोर अवस्था में था और सेवकाई के लिए अलग अलग जगहों में जाया करता था, तो कई बार गांव की छोटी कलीसियाओं में रात्रि सभा होती थी, जिसमें कई माताएं और बहनें छोटे बच्चों के साथ आती थी, जो उन्हें वचन सुनने में बाधा पहुंचाते थे, लेकिन माताएं बच्चों को बाहों में लिए हुए उन्हें सुलाने का प्रयत्न करती थी, और जब बच्चा सो जाता तब वे प्रभु के वचन का आनंद रात भर अपने पति एवं सभी परिवार के साथ लेते थे, और यह सिलसिला कई दिनों तक चलता ही रहा। मित्रों, किसी ने मुझे एक प्रचारक के बारे में बताया जो कुछ साल पहले वहां पर एक सभा का आयोजन किया था। उसने लोगों को बताया कि वह प्रेरित पौलुस से भी महान प्रचारक है। उसने थोड़े समय तक रुक रुक कर देखा कि लोग उससे प्रश्न पूछेंगे या नहीं। तब उसने कहा, मैं प्रेरित पौलुस से महान प्रचारक हूं, क्योंकि उसने आधी रात्रि तक प्रभु का वचन प्रचार किया और सिर्फ एक व्यक्ति को ही सुला पाया, और मैं 30 मिनट भी प्रचार नहीं किया हूं और मैंने एक दर्जन लोगों को सुला दिया है। मित्रों, उस आधार पर मैं भी बच्चों को सुलाने वाला बड़ा प्रचारक हूं, है कि नहीं? मित्रों, इस देश की कई छोटी कलीसियाएं उतनी अच्छी तरह से स्थापित नहीं है, लेकिन वे कुछ अद्भुत परमेश्वर के संतों को तैयार करती हैं। मैं उस क्रांतिकारी भीड़ पर भरोसा नहीं करता जो आज हमारे परिसर में हो हल्ला कर रहे हैं। मेरे मित्रों, हमने गलती की है। परमेश्वर का तरीका परमेश्वर को केंद्र में रखना चाहिए, और हम इस तरीके को दूर हटा रहे हैं, अर्थात हट गए हैं। मित्रों, हमें इस पद में यह भी बताया गया है कि उन्हें मेमने के मांस को आग में भूनकर खाना है, और आग न्याय को दर्शाती है, इसलिए वहां पर अवश्य ही पाप का न्याय था। उन्हें मेमने को अखमीरी रोटी के साथ खाना था। खमीर पाप को दर्शाता है और अखमीरी रोटी मसीह को दर्शाता है। जैसे ही वह जो हमें तृप्त करने पर है, उन्हें भी इस भोजन में सहभागिता कड़वी औषधि के साथ करनी थी। यद्यपि इस औषधि के अनेक अर्थ हैं, मेरा विश्वास इस संदर्भ में यह है कि हमारा अनुभव हमेशा ही अच्छा नहीं होगा। यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार करने के बाद सब कुछ सब समय अच्छा नहीं होगा, क्योंकि छुटकारे के साथ साथ कड़वी औषधि भी आती है। हम निर्गमन की पुस्तक उसके 12 अध्याय के 9 पद में आगे पढ़ते हैं, लिखा है, उसको सिर पैर और अतड़ियों समेत आग में भूंजकर खाना, कच्चा व जल में कुछ भी पकाकर ना खाना। मित्रों, इस बलिदान को कच्चा नहीं खाया जा सकता है, क्योंकि यह मनुष्य के जीवन में पापों के न्याय के बारे में बताता है, और यह बलिदान की मांग करता है, और आग के द्वारा न्याय भी की जाती है। जब कोई व्यक्ति मसीह के पास आता है तो वह एक पापी के रूप में आता है, न ही उस बलिदान को पानी के साथ भिगोना था। इसका साधारण सा अर्थ है कि हमें मसीह पर भरोसा करना चाहिए और सिर्फ उसी पर, लेकिन दुर्भाग्यवश आज बहुत से लोग हैं जो अपने उद्धार के लिए पानी पर भरोसा करते हैं। सब कुछ अच्छी तरह से भूना जाना चाहिए था, और यह आग का न्याय था। हम निर्गमन 12 उसके 11 और 12 पद में पढ़ते हैं, और उसके खाने की यह विधि है कि कमर बांधे, पांव में जूती पहने और हाथ में लाठी लिए हुए उसे फुर्ती से खाना। वह तो यहोवा का पर्व होगा, क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में होकर जाऊंगा, और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सबके पहलौठों को मारूंगा, और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा। मैं तो यहोवा हूं। मित्रों, जब आप मसीह के पास आते हैं तो आपकी कमर कसी हुई होनी चाहिए, और इस संसार से बाहर निकलने के लिए तैयार रहना चाहिए, और इस संसार में फिर से कभी भी शामिल नहीं होना है। मैं इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता हूं कि आपका जीवन बदल गया है, फिर भी आप लगातार एक पापपूर्ण जीवन जी रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप कभी भी पाप नहीं करेंगे, परंतु इसका मतलब यह है कि आप इसे आदत बनाकर पाप में जीने का तरीका नहीं बनाएंगे। मित्रों, एक स्त्री के बारे में उदाहरण देना चाहता हूं। एक महिला जो शराब बेचकर अपना जीवन गुजार करती थी, एक दिन मसीह के विश्वास में आई। उसने कलीसिया के पादरी साहब से कहा कि वह शराब बनाने का व्यापार बंद कर रही है। उसने कहा, यदि आप मुझसे कहेंगे कि एक हथौड़ी लेकर दुकान की सभी बोतलों को तोड़ दो तो मैं वह भी करूंगी। परंतु उसके पास यही सब कुछ था। पादरी साहब ने उससे कहा कि इन सबको बेच दे। उसने ऐसा ही किया और आज वह एक अच्छा मसीही जीवन जी रही है। मित्रों, आप मिस्र की गुलामी से बाहर निकल सकते हैं यदि आपके दरवाजे में लोहू लगा है। तब आपको बलिदान किए हुए मेमने को कमर कसकर और जाने के लिए तैयार रहकर खाना है। मित्रों, परमेश्वर ने अपने विपत्तियों को मिस्र के प्रधान देवताओं के विरोध में एक समय में एक ही विपत्ति को भेजने का आदेश दिया। सभी देवता पहलौठों के बलिदान का मांग करते थे। अब परमेश्वर अपने बंदूक की नली को सभी मिस्र के मूर्ति पूजकों के विरोध में करते हैं। हम निर्गमन उसके 12 अध्याय के 13 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लोहू तुम्हारे निमित्त चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लोहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा, और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वह विपत्ति तुम पर न पड़ेगी और तुम नाश न होगे। मित्रों, इसराइली लोग इसलिए नहीं बचाए गए क्योंकि वे इब्राहिम के वंशज थे। यदि मिस्री लोग परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते तो वे भी बचाए जाते। परमेश्वर ने कहा, मैं उस लोहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा। कोई भी इसलिए नहीं बचाया गया कि किसने सबसे अच्छा किया, या इसलिए कि वह ईमानदार था, या इसलिए कि वह एक अच्छा व्यक्ति था। परमेश्वर ने कहा, मैं उस लोहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा। उन्हें रात्रि के समय घर के बाहर दौड़कर लोहू को देखने की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें सिर्फ उस पर भरोसा और विश्वास करना था। वे इसलिए नहीं बचाए गए क्योंकि वे सभी प्रकार की रीति रिवाज और खतना को किए, या इसलिए कि वे एक ही कलीसिया के थे। परमेश्वर ने कहा, मैं उस लोहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा। मृत्युदूत पड़ोसियों का सर्वेक्षण नहीं कर रहा था। उन्हें खिड़की खोलकर मृत्युदूत को यह नहीं कहना है कि देख हम लोगों ने कितने सामाजिक कार्य किए हैं। यदि कोई व्यक्ति उस रात अपने सिर को खिड़की से बाहर झांकने के लिए निकालता तो निश्चय ही वह मर जाता। परमेश्वर ने कहा, मैं उस लोहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा। इसमें और कुछ जोड़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं थी। उस रात्रि को कौन बचाया गया? जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया वे ही बचाए गए। जिन्होंने अपने दरवाजे के आलंगों में लोहू को छिड़का और उस पर विश्वास किया वे ही बचाए गए। यद्यपि मैं पूर्ण रीति से इसे नहीं समझता हूं, परंतु मैं उस पर विश्वास करता हूं जिसे परमेश्वर ने कहा है। वह मुझसे कहते हैं कि यीशु मसीह के द्वारा बहाया गया लोहू मुझे उद्धार दे सकता है और दूसरा कोई भी नहीं दे सकेगा। मित्रों, परमेश्वर ने कहा, जब वह लोहू को देखेगा तो वह उस घर को छोड़ देगा। लोहू कोई रहस्यवादी या अंधविश्वासी का चिन्ह नहीं था। परमेश्वर के संपूर्ण वचन में से होकर एक महान सिद्धांत चलती है कि बिना लोहू बहाए पापों से छुटकारा नहीं है। दूसरे शब्दों में कहें कि परमेश्वर मनमाने ढंग से या बड़ी दयालुता के कारण अपनी आंखों को पाप के लिए बंद नहीं कर सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि इसके प्रति कुछ न करें। जब कोई अपराधी न्याय के सामने लाया जाता है तो जो न्यायी करता है वह परमेश्वर भी करेंगे। न्यायी को अपराधी के ऊपर कानून को लागू करना चाहिए और उसकी कीमत चुकाए जानी चाहिए। हमारी समस्याओं के कुछ भागों में हमारा देश कानून को लागू करने में ढीलापन या ढिलाई देता है, परंतु ब्रह्मांड के परमेश्वर का कानून या व्यवस्था अटल है। जो आत्मा पाप करता है वह निश्चित मरेगा। मृत्यु की सजा हम सबके ऊपर है, परंतु परमेश्वर अनुग्रहकारी है और एक निर्दोष जीवन अपराधी के बदले में दिया जा सकता है। जब तक मसीह नहीं आया, यह एक मेमना ही था जो पाप को अपने ऊपर लेता था। तब यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना आया जो जगत का पाप उठा ले जाता है। यूहन्ना 1 अध्याय उसके 29 पद में हम पाते हैं, इसलिए यदि हम मसीह को स्वीकार करते हैं तो हमें जो सजा पापी होने के कारण मिलनी थी उससे बचाए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि मिस्र में उस रात्रि के समय प्रत्येक घर में पहलौठों की मृत्यु हो गई। जिस घर में लोहों के द्वारा सुरक्षा नहीं की गई थी उसी घर में मृत्यु आई। मित्रों आप देखें कि दरवाजे की चौखट पर लोहू का उपयोग करना और घर की सुहावटी दोनों विश्वास का एक संकेत था। वह उस विनियोग का उत्तर है जो व्यक्तिगत रीति से मसीह में विश्वास करने के द्वारा होता है। इसके बाद से फसा के पर्व का अनुसरण किया जाने लगा। मित्रों फसा का पर्व लय व्यवस्था की पुस्तक में भी मिलता है, जहां पर फसा मनाने के निर्देश और बिना खमीर अर्थात अखमीरी रोटी के पर्व का निर्देश दिया गया है, जो वास्तव में इसका ही एक हिस्सा या भाग है, परंतु यह फसा पर्व के बाद में हुआ था। मित्रों यहां पर हमारा समय समाप्त होता है और मैं विश्वास करता हूं कि इस अध्ययन के द्वारा आप अवश्य ही नई बातों को सीखे हैं और आत्मिक लाभ भी प्राप्त किए हैं। यदि आप भी उद्धार पाना चाहते हैं तो प्रभु यीशु को स्वीकार करें, जिसने अपना लहू क्रूस पर आपके पापों के बदले में बहा दिया ताकि आप बच जाएं। जिस प्रकार घर के चौखट में लगे लहू के कारण इसराइली बच गए, उसी प्रकार आप भी मसीह के लहू के द्वारा बचाए जा सकते हैं। आज प्रार्थना करें और यीशु को अपने जीवन के दरवाजे से हृदय में प्रवेश करने दें। वह आपको छुटकारा और शांति प्रदान करेंगे। प्रभु आप सबों को इस वचन के द्वारा आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन TWR पोस्ट बॉक्स नंबर 4310 नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन TWR पोस्ट बॉक्स नंबर 4310 न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
लहू यीशु का रहमत तो वाला, लहू यीशु का कुवत तो वाला, लहू यीशु का रहमत तो वाला, लहू यीशु का कुवत तो वाला, गिरते हुओं को लहू ने संभाला, मसा हमें। रूह से किया है। हमको मददगार यीशु ने दिया है, मसा हमें पाक रूह से किया है। अब ना उदासी है, रागद कोई प्याला शिफा